नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल कुमार और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ मोना पार्थ सारथी। मोना जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
शुक्रिया, सभी श्रोताओं को नमस्कार।
और आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर नजर डालते हैं। पीवी सिंधु ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। 8 भारतीय निशानेबाजों ने दोहा में होने वाले ISSF विश्व कप फाइनल में जगह पक्की की। नीरज चोपड़ा विश्व चैंपियनशिप की भाला फेंक स्पर्धा में 8वें स्थान पर और सचिन यादव सर्वश्रेष्ठ 86.27 मीटर थ्रो के साथ चौथे स्थान पर रहे। और एशिया कप 2020 क्रिकेट प्रतियोगिता में अफगानिस्तान का सामना श्रीलंका से, अब तक 5 ओवर में 3 विकेट खोकर अफगानिस्तान ने 40 रन बनाए और कल भारत का सामना होगा ओमान से। पीवी सिंधु ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता सिंधु ने प्री क्वार्टर फाइनल में थाईलैंड की 6वीं वरीयता प्राप्त पोनपावी चोचुवांग को 21-15, 21-15 से पराजित किया। वहीं पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने भी अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है। मोना, अगर पीवी सिंधु की हम बात करते हैं, कई बार ऐसा हमने देखा है कि लय थोड़ी सी भटकी लेकिन उसके बाद वापसी करने की जद्दोजहद उनमें नजर आ रही। इस बार के इस टूर्नामेंट में अब तक के खेल पर अगर हम नजर डालें तो कुछ अच्छा नजर आ रहा, दिख रहा है कि कुछ बेहतर प्रदर्शन कर रही है।
देखिए, पहली बात तो उन्होंने बहुत ही दमदार प्रतिद्वंदी को हराया। पोनपावी जो है वो काफी समय इंडोनेशिया ओपन में भी उनके साथ खेली थी, तो काफी पुरानी प्रतिद्वंदी है और बहुत ही शुरू से जो उन्होंने लय पकड़ी, खासकर हांगकांग ओपन जो इससे पिछला टूर्नामेंट था वहां पहले ही दौर से वो भार हो गई थी और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने वापसी की है और क्वार्टर फाइनल तक पहुंची है, लेकिन यहां पर भी उन्हें क्वार्टर फाइनल से आगे की बाधा पार करनी होगी क्योंकि ओलंपिक के बाद से हमने देखा है कि ऑन एंड ऑफ उनके प्रदर्शन में काफी उतार चढ़ाव देखे जा रहे हैं। तो यहां पर अगर वो टूर्नामेंट जीतती हैं या फाइनल तक भी पहुंचती है तो वो आत्मविश्वास और वो लय जिसकी हम बात करते हैं बार बार, वो शायद वापस पाने में कामयाब रहेंगे।
अगर सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी चिराग शेट्टी की जोड़ी की हम बात करते हैं तो ये जोड़ी अच्छा प्रदर्शन करती है, लेकिन शायद अंतिम जो मैचेस होते हैं सेमीफाइनल और फाइनल के वहां तक पहुंचते पहुंचते हतोत्साहित हो जाते हैं।
देखिए, दुनिया में नंबर 1 रह चुके हैं और इनके साथ भी वही है कि हांगकांग ओपन से पहले लगातार शुरुआती दौर में भार हो रहे थे लेकिन हांगकांग ओपन में फाइनल तक पहुंचे और उसके तुरंत ही बाद ये टूर्नामेंट खेल रहे हैं। तो यहां पर हम उम्मीद करेंगे उनसे कि उससे आगे की बाधा वो पार करें और जैसे कि आपको पता है सबकी नजरें अभी ओलंपिक 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक की तरफ ही जो तैयारियां जा रही है वो जा रही है, तो उसको ध्यान में रखते हुए यहां आत्मविश्वास हासिल करने के लिए बहुत जरूरी है और भारतीय बैडमिंटन के लिए बहुत जरूरी है कि कोई पदक या कोई खिताब सामने आए क्योंकि लक्ष्य सेन पहले ही बाहर हो चुके हैं शुरुआती दौर में ही, तो इन दोनों पर नजरें यहां भारत की टिकी हुई होंगी।
जी, आगे बढ़ते हैं। 8 भारतीय निशानेबाजों ने 4 से 9 दिसंबर तक दोहा में होने वाले ISSF विश्व कप फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली, जिसमें 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर भी शामिल हैं। मनु एकमात्र ऐसे निशानेबाज हैं जिन्होंने विश्व कप फाइनल की 2 स्पर्धाओं में जगह बनाई है। भारतीय निशानेबाज इन 12 में से 5 स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे। हालांकि भारतीय निशानेबाजों के पास अब भी एथेंस में होने वाली आगामी ISSF विश्व चैंपियनशिप शॉटगन और मिस्र के काहिरा में होने वाले विश्व चैंपियनशिप राइफल पिस्टल में पदक जीत कर फाइनल के लिए क्वालिफाई करने का मौका है। भारत का 2025 में विश्व कप चरणों में प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ रहा है। भारत ने राइफल, पिस्टल और शॉटगन में 9 स्वर्ण, 6 रजत और 7 कांस्य सहित कुल 22 पदक जीते हैं, जिससे वो कुल मिलाकर दूसरे स्थान पर रहा है। अगर मनु भाकर का हम यहां पर जिक्र करें तो लगातार अच्छी खबरें उनकी तरफ से आती रही हैं। अपने फैंस की बात करें, क्रिकेट खेल प्रेमियों की हम बात करते हैं, उन्हें निराश नहीं किया उन्होंने?
बिल्कुल नहीं किया। एक तो ओलंपिक में ही 2 पदक उन्होंने जीते और उसके बाद से सिलसिला उनका पदक जीतने का जारी है और ये जो टूर्नामेंट है ये काफी प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट है और इसमें 2 प्रतियोगिताओं में जगह बनाना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है क्योंकि इससे हर ओलंपिक वर्ग में जो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ निशानेबाज है उसका निर्धारण होता है और यहां मनु भाकर 10 मीटर एयर पिस्टल और 25 मीटर एयर पिस्टल दोनों में अपनी चुनौती पेश करेगी तो काफी बड़ी बात है और वो दावेदार भी हैं इसमें सर्वश्रेष्ठ चुने जाने के। और फिर सुरुचि सिंह जो भारत की नई सेंसेशन है शूटिंग में, जिन्होंने ब्यूनस आयर्स, लीमा और म्यूनिक तीनों वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीता था और यहां क्वालिफाई किया। ऐशा सिंह है टीम में, रुद्रांश पाटिल है जो पूर्व चैंपियन, पूर्व नंबर एक रह चुके हैं, और सिफत कौर सामरा का जिन्होंने अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। तो काफी एक मजबूत और दमदार टीम भारत की इसमें लग रही है, और मुझे लगता है कि जो निशानेबाजी में अच्छे प्रदर्शन का सिलसिला चल रहा है, पेरिस ओलंपिक से चला रहा है, जहां हमने काफी सूखा खत्म किया पदकों का, पदक जीते, वो सिलसिला यहां भी कायम रहेगा।
अभी आपने ओलंपिक का जिक्र लॉस एंजलिस की बात कर रहे थे, वहां पर भी हम जरूर ये देखेंगे इस तरह के जो बड़े नाम आपने लिए हैं ये वहां पर अपना अच्छा प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि लगातार कह सकते हैं ग्राफ हमारा ऊपर की ओर चढ़ रहा है।
बिल्कुल, बीच में एक गैप आया था, अगर हम निशानेबाजी की बात करें तो बीजिंग से जो सिलसिला अभिनव बिंद्रा ने शुरू किया था, फिर उसको उससे भी पहले राज्यवर्धन सिंह राठौर ने पदक जीता था एथेंस में, और उसके बाद गगन नारंग, विजय कुमार, लेकिन फिर एक अचानक से गैप आ गया था लंबा, लेकिन पिच इस पेरिस ओलंपिक में वो गैप दूर हुआ, वो कमी पूरी हुई, और मनु भाकर को बहुत ज्यादा उसका श्रेय जाता है कि भारत की झोली में निशानेबाजी के पदक फिर से आने लगे।
नीरज चोपड़ा टोक्यो में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में अपने पहले पांच प्रयासों के बाद बाहर हो गए। वहीं सचिन यादव ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए चौथा स्थान हासिल किया। नीरज ने प्रतियोगिता में 84.03 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो फेंका और वे कुल मिलाकर आठवें स्थान पर रहे। सचिन यादव का सर्वश्रेष्ठ थ्रो 86.27 मीटर का रहा। आइए सुनते हैं ये रिपोर्ट।
टोक्यो में विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में नीरज चोपड़ा आठवें स्थान पर रहे। नीरज का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 84.03 मीटर का रहा। नीरज के अलावा इस स्पर्धा में भारत के लिए सचिन यादव ने भी भाग लिया, शानदार प्रदर्शन करते हुए चौथे नंबर पर रहे। सचिन यादव ने 86.27 मीटर तक भाला फेंक कर अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। सचिन यादव केवल 40 सेंटीमीटर की दूरी से कांस्य पदक प्राप्त करने से चूक गए। त्रिनिदाद और टोबेगो के केशोन वॉलकॉट ने 88.16 मीटर के साथ स्वर्ण पदक जीता। ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स ने 87.36 मीटर तक भाला फेंक कर रजत पदक हासिल किया। अमेरिका के कार्टिस थॉमसन ने कांस्य पदक अपने नाम किया, उन्होंने 86.67 मीटर तक भाला फेंका। नीरज चोपड़ा ने पहले प्रयास में 83.65 मीटर और दूसरे प्रयास में 84.03 मीटर तक भाला फेंका, जबकि तीसरा और पांचवा प्रयास विफल रहा। नीरज का चौथा प्रयास 82.86 मीटर तक का रहा। सचिन यादव ने पहले प्रयास में 86.27 मीटर तक भाला फेंका, उनका दूसरा प्रयास असफल रहा, जबकि तीसरे प्रयास में उन्होंने 85.71 मीटर तक भाला फेंका। पाकिस्तान के अरशद नदीम 10वें स्थान पर रहे। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
मोना, आज की ये वैसे तो बहुत बड़ी खबर रही कि नीरज ने अपने प्रशंसकों को निराश किया, उतना बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाया, और खासतौर पे ये वहीं पर मुकाबला हो रहा था जहां पर उन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता था।
बिल्कुल, 2021 में टोक्यो में इसी जगह पर उन्होंने इतिहास रचा था और स्वर्ण पदक अपने नाम किया था, भारत की झोली में डाला था, लेकिन आज बिल्कुल ही वो फॉर्म में नजर नहीं आए। जिस तरह से क्वालिफिकेशन में भी पहले ही थ्रो में उन्होंने क्वालिफाई कर लिया था, तो लग रहा था कि आज वो, चूंकि दोहा में मई में वो 90 मीटर का बैरियर भी कर चुके थे, तो लग रहा था कि वो खुलकर खेलेंगे और भारत को पदक तो पक्का मान के चल रहे थे। ये लग रहा था कि कौन सा पहला, दूसरा, तीसरा कौन सा स्थान उनको मिलता है, लेकिन जब पहला ही उन्होंने थ्रो फेंका तो लग रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि पिछले 3-4 साल में हम लोगों को आदत ही नहीं है कि नीरज चोपड़ा पोडियम पे ना रहे। हर टूर्नामेंट में पहले दूसरे स्थान पर उनको देखने की आदत पड़ी हुई है, लेकिन आप अगर देखें कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो ये प्रदर्शन रहा है भाला फेंक में, जूलियन वेबर अभी दोहा डायमंड लीग जीते हैं, लेकिन वो बाहर हो गए बहुत शुरुआती दौर में। अरशद नदीम ओलंपिक चैंपियन, वो बाहर हो गए, और सचिन यादव, किसी ने सोचा भी नहीं था, सभी की नजरें थी नीरज चोपड़ा और सचिन आखिर तक कंटेंशन में थे कि शायद 0.40 सेंटीमीटर
से वो बचे कि वो पदक नहीं जीत पाए,
चूक गए। तो अभी ऐसी भी खबरें आ रही कि नीरज पूरी तरह से फिट नहीं थे, उनकी कमर में कोई तकलीफ थी, उनका जो एक्शन था थ्रो फेंकने का उससे भी लग रहा था कि कहीं ना कहीं वो उस रिदम में नहीं है जिसके लिए उनको जाना जाता है। लेकिन हर चैंपियन खिलाड़ी का एक दिन ऐसा होता है जब वो खराब होता है, प्रदर्शन अच्छा नहीं होता, तो इतने ही उनके प्रदर्शन में हमने निरंतरता देखी है, इसलिए हमारी अपेक्षाएं उनसे हमेशा ज्यादा रहती है, लेकिन ये वर्ल्ड चैंपियनशिप है और यहाँ कुछ भी हो सकता था।
और अब क्रिकेट की बात करते हैं तो एशिया कप 2020 क्रिकेट में अबुधाबी में अफगानिस्तान का सामना श्रीलंका से हो रहा है। अफगानिस्तान ने अंतिम समाचार मिलने तक आठवें ओवर में 3 विकेट पर 50 रन बना लिए हैं। सुपर फोर में जगह बनाने के लिए अफगानिस्तान को हर हाल में यह मैच जीतना होगा। इससे पहले प्रतियोगिता में कल ग्रुप ए के मुकाबले में पाकिस्तान ने मेजबान संयुक्त अरब अमीरात को 41 रन से हराया था। पाकिस्तान की 147 रन के लक्ष्य के जवाब में मेजबान टीम 105 रन ही बना सकी थी। अफगानिस्तान की जहां तक बात है तो सुपर फोर में जगह बनाने के लिए मैच उन्हें जीतना बहुत जरूरी है, लेकिन श्रीलंका के लिहाज से देखें तो कैसा आपको लगता है, किस तरह की लड़ाई ये देखने को मिल रही है?
देखिए, ये अफगानिस्तान टीम वो प्रदर्शन नहीं कर पाई है जो T20 वर्ल्ड कप में हमने देखा था, जब सेमीफाइनल तक पहुंचकर सभी को चौंका दिया था। और दूसरी तरफ देखिए, श्रीलंका के गेंदबाजों ने खासतौर पर अच्छा प्रदर्शन किया है, अच्छी शुरुआत नहीं करने दी अफगानिस्तान को, तो यहां से अफगानिस्तान के लिए वापसी करना बहुत मुश्किल लग रहा है
जी। और अब भारत की अगर बात करते हैं तो कल एशिया कप 2020 में भारत का मुकाबला ओमान से होगा। यह मैच भारतीय समय के अनुसार अबुधाबी में रात 8 बजे से खेला जाएगा। भारतीय टीम सुपर फोर के लिए पहले ही क्वालिफाई कर चुकी है। इससे पहले भारतीय टीम ने संयुक्त अरब अमीरात और पाकिस्तान को हराया था और ओमान के लिए ये बड़ा ही मुकाबला होने वाला है। क्या लगता है आपको
इसमें लगने के लिए? कुछ मुझे लगता है कि है ही नहीं, ये बड़ा ही बेमेल सा एक मुकाबला है। अब यहाँ देखना ही होगा कि जो कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्य कुमार है वो टीम संयोजन में क्या किसी तरीके का बदलाव करते हैं, क्या जसप्रीत बुमराह को आराम दिया जाता है और अर्शदीप सिंह को उतारा जाता है, या फिर हरफन मौलाओं को ही उतारने की वो अपनी जो रणनीति है उस पर कायम रहते हैं। टीम में जो बदलाव होंगे उन्हीं पर यहाँ नजरें होगी, क्या वरुण चक्रवर्ती या कुलदीप यादव में से किसी को ब्रेक दिया जाता है, क्योंकि अगला जो मुकाबला है वो पाकिस्तान से होने वाला है 21 तारीख को, तो उसके लिए उसकी तैयारी के लिए है ये भी जरूरी कि बल्लेबाजों को अभ्यास मिले, क्योंकि पिछले 2 मैचों में हमने लक्ष्य का पीछा किया है, बल्लेबाजी अभ्यास नहीं मिला। और अगर यहां ओमान पहले खेलता है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि एक बार फिर बल्लेबाजों को अभ्यास न मिल पाए।
मोना, भी आपने वरुण चक्रवर्ती का जिक्र किया है तो उनके लिए बड़ी अच्छी खबर ये रही कि आईसीसी की 2020 रैंकिंग में पहली बार शीर्ष स्थान हासिल किया है। एक गेंदबाज होने के नजरिए से अगर देखा जाए तो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है कि आपको नंबर वन माना जाए। और सबसे अच्छी बात ये रही कि उन्होंने न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज जैकब डफी को पीछे छोड़ा है
और जसप्रीत बुमराह और रवि बिश्नोई के बाद तीसरे भारतीय गेंदबाज है जो टॉप में पहुंचे हैं T20 गेंदबाजों की रैंकिंग में। आप देखिए, मिस्ट्री स्पिनर का जो उनको एक वो मिला हुआ है तमगा, कि बिल्कुल जिस तरीके से वो मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस उनकी रही है पिछले पूरे साल में अगर हम देखें तो बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन है। और टीम में इतने एक एक स्थान के लिए जहां इतनी कॉम्पिटिशन है वहां उन्होंने एक अपनी जगह पक्की करके रखी है।
और श्रोताओं, आपको बता दें कि एशिया कप में शानदार गेंदबाजी कर रहे बाएं हाथ के स्पिनर कुलदीप यादव ने भी आईसीसी की रैंकिंग में 16 स्थान की छलांग लगाई और फिलहाल 23वें नंबर पर पहुंच गए हैं। इस बीच भारतीय बल्लेबाज जेमिमा रॉड्रिक्स वायरल बुखार के कारण ऑस्ट्रेलिया के साथ होने वाले शेष एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में नहीं खेल सकेंगे। उनके स्थान पर तेजल हस्पनिस को टीम में शामिल किया गया है। अब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला होना है 20 सितंबर को नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में। और आपको यह बता दें कि यह मैच दिन में 1:30 बजे से शुरू होगा। और कुश्ती की बात की जाए तो अंतिम पंघाल विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग के मुकाबले में कांस्य पदक के लिए खेलेंगे, जहां उनका सामना स्वीडन की एम्मा जोना डेनाइस एम से होगा। हालांकि राधिका और ज्योति बेरीवाल प्रतियोगिता से बाहर हो गई हैं। मोना, पहले तो अंतिम ने शुरुआत बड़े आसान जीत के साथ की जब उन्होंने स्पेन की कार्ला जेम सोनेर को मात्र 23 सेकंड में नॉकआउट से हराया, लेकिन बाद में उनकी स्थिति थोड़ी सी डाउन होती गई और वो अब काफी निराश किया उन्होंने।
बिल्कुल, पदक की प्रबल खिताब की प्रबल दावेदार मानी जा रही थी, लेकिन जिस तरीके से सेमीफाइनल मुकाबला उन्होंने गवाया, काफी आसानी से घुटने टेक दिए। और अभी यहां भी उनका सामना जो है वो U23 चैंपियन से होने वाला है, तो ये भी चुनौती उनके लिए आसान रहने वाली नहीं है।
और श्रोताओं, चलते चलते आपको ये बता दें कि भारत और दुनिया के कई शीर्ष खिलाड़ी 17वें विमेंस इंडिया गोल्फ टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे। इसका आयोजन 9 से 12 अक्टूबर तक गुरुग्राम में किया जाएगा। 72 होल के टूर्नामेंट में 28 देशों के 114 खिलाड़ी शामिल होंगे और भारतीय महिला गोल्फ संघ के अध्यक्ष कविता सिंह ने इस प्रतियोगिता के बारे में जानकारी दी है। मोना, आपने कार्यक्रम में हिस्सा लिया और चर्चा में शामिल हमारे साथ में, हमारी जिज्ञासाओं का समाधान किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
शुक्रिया।
तो श्रोताओं, एक नई मुलाकात के वादे के साथ अनुमति दीजिए निखिल को, कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन यहीं पर संपन्न करने की। फिर मिलेंगे। नमस्कार।